एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो दिमाग की गहराइयों तक जाता है।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं एक बुनियादी सवाल की जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम सब आम इंसानों को उलझाया है।
बिल्कुल।
क्या हम वाकई अपनी मर्जी के मालिक हैं? क्या हमारे फैसले सचमुच हमारे हैं या किसी अनदेखे धागे से बंधे हैं?
हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है और इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगी रॉबर्ट केन द्वारा संपादित पुस्तक फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा।
सही।
ये किताब हमें इस सदियों पुरानी बहस के अलग अलग रास्तों और मंजिलों से रूबरू कराती है। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है, शायद पहले से ज्यादा। सोचिए, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी नैतिकता, आना, किसी की तारीफ करना, इन सब का आधार कहीं ना कहीं इसी सवाल में छुपा है।
एकदम सही कहा। तो चलिए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें कहाँ ले जाती है। इस सफर में हमारे गाइड हैं रॉबर्ट केन, 1988 to 2024 इस किताब के संपादक। लेकिन जैसा आपने कहा, वो सिर्फ संपादक नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि खुद इस मैदान के एक बड़े खिलाड़ी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी सवाल को समझने और समझाने में लगाया। वे दुनिया के उन अग्रणी विचारकों में से थे जिन्होंने स्वतंत्र इच्छा के विषय को गहराई से परखा।
हाँ, और उनकी खास पहचान थी, वे लिबर्टेरियन दृष्टिकोण के बड़े समर्थक थे।
सही।
अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगे, पर इसका सीधा मतलब है कि वे मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब ये मान लिया जाए कि दुनिया पूरी तरह से पहले से तय, मतलब डिटर्मिंड नहीं है।
अच्छा।
उनका एक बहुत मशहूर विचार है, सेल्फ फॉर्मिंग एक्शंस, SFAs। ये जिंदगी के वो अहम मोड़ होते हैं जब हम किसी मुश्किल, नैतिक या निजी कश्मकश में होते हैं और अनिश्चितता के बीच अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके न सिर्फ एक रास्ता चुनते हैं बल्कि एक तरह से अपने भविष्य के स्व को भी आकार देते हैं।
ये बहुत दिलचस्प विचार है कि हम अपने कुछ फैसलों से खुद को गढ़ते हैं।
हाँ।
लेकिन केन की एक और बड़ी खूबी थी उनकी निष्पक्षता। अपने मजबूत विचारों के बावजूद उन्होंने इस किताब में दूसरे खेमों जैसे कंपैटिबलिज्म जी, जो मानते हैं कि स्वतंत्रता और नियतिवाद साथ चल सकते हैं,
ठीक है,
और हार्ड डिटर्मिनिज्म जो स्वतंत्रता को भ्रम मानते हैं, उनको भी पूरी ईमानदारी और सम्मान से जगह दी है।
ये जरूरी है।
उनकी गहरी समझ इस किताब को बहुत संतुलित बनाती है। वे एक गाइड की तरह हर रास्ते की खूबी और खामी दोनों दिखाते हैं।
तो ये किताब असल में क्या है, जैसा भी कहा, ये एक संकलन है, एक एंथोलॉजी।
हाँ।
मतलब इसमें एक ही लेखक के विचार नहीं बल्कि स्वतंत्र इच्छा के मुद्दे पर अलग अलग समय के अलग अलग विचारकों के अहम लेखों को जमा किया गया है। पुराने जमाने के दार्शनिकों से लेकर आज के दौर के चिंतकों तक।
सही।
इसका मकसद किसी एक नतीजे पर पहुंचना नहीं बल्कि पूरी बहस का एक नक्शा पेश करना है।
इस किताब का दिल है एक तनाव। एक तरफ है हमारा रोजमर्रा का गहरा एहसास कि हम आजाद हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं,
बिल्कुल,
हम अपने जीवन की गाड़ी खुद चला रहे हैं, और दूसरी तरफ है विज्ञान और दर्शन का ये विचार कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है।
हाँ, कारण कार्य संबंध,
और वो कारण भी अपने से पहले के कारणों का नतीजा होता है जिसे नियतिवाद मतलब डिटर्मिनिज्म कहते हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकते हैं?
यही तो असली पेंच है। ये किताब कुछ बुनियादी सवाल उठाती है। आखिर इस स्वतंत्र इच्छा का मतलब क्या है?
सही।
क्या इसका मतलब है कि हम जो चाहें कर सकते हैं? क्या ये दुनिया के कारण कार्य के नियमों के साथ मुमकिन है? अगर नहीं तो क्या हमारे काम सिर्फ संयोग या बेतरतीब मतलब रैंडम है? और अगर हाँ तो फिर वे हमारे कैसे हुए?
बिल्कुल।
और सबसे बड़ी बात, इन सवालों से हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है?
बिल्कुल। किताब हमें दिखाती है कि इन सवालों के जवाब हमारी पूरी नैतिक दुनिया की नींव हिला सकते हैं। हम किसे जिम्मेदार ठहराएं, किसे माफ करें, सजा का मकसद क्या हो,
हमारी उपलब्धियों का श्रेय किसे दें?
हाँ बिल्कुल। किताब हमें मोटे तौर पर तीन मुख्य खेमों से मिलवाती है।
अच्छा, कौन कौन से?
पहला है कंपैटिबलिज्म।
कंपैटिबलिज्म,
ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और नियतिवाद दोनों एक साथ सच हो सकते हैं।
ओके।
स्वतंत्रता का मतलब जबरदस्ती या मजबूरी का ना होना है, न कि कारण का न होना।
ठीक है।
दूसरा है इनकंपैटिबलिज्म।
ठीक है,
ये कहते हैं कि नहीं, स्वतंत्रता और नियतिवाद एक साथ नहीं चल सकते, इनमें से एक ही सच होगा।
अच्छा, ये विरोधी हैं।
हाँ, इसके दो मुख्य रूप हैं, एक तो लिबर्टेरियनिज्म,
जैसे केन खुद थे।
बिल्कुल, ये मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं इसलिए नियतिवाद गलत है, और दूसरा है हार्ड डिटर्मिनिज्म, फ्री विल स्केप्टिसिज्म,
स्केप्टिक्स संदेहवादी।
हाँ, ये मानते हैं कि नियतिवाद सच है इसलिए हमारी स्वतंत्रता का एहसास एक भ्रम है।
बाप रे, तो ये किताब एक तरह से हमें इस जटिल बहस के भूल भुलैया भरे रास्तों पर ले जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग खेमे अपने तर्क कैसे पेश करते हैं।
ठीक है, किताब की शुरुआत ऐतिहासिक जड़ों से होती है, अरस्तु से लेकर स्टोइक्स तक।
हाँ।
फिर आधुनिक दर्शन के शुरुआती विचारक जैसे हॉब्स और डेविड ह्यूम। ह्यूम का विचार बहुत प्रभावशाली रहा, खासकर कंपैटिबलिज्म के लिए। उनका कहना था कि हम तब स्वतंत्र होते हैं जब हम वो कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी रोक टोक या जबरदस्ती के।
अच्छा,
इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी वो चाहत कहाँ से आई, बस हम उस पर अमल कर पाए, यही स्वतंत्रता है। ये आज भी कंपैटिबलिस्ट सोच का आधार है।
समझ गया, मतलब अगर मुझे चाय पीने की इच्छा है और मुझे कोई रोक नहीं रहा है तो मैं चाय पीने के लिए स्वतंत्र हूँ।
हाँ।
भले ही मेरी चाय पीने की इच्छा मेरे पिछले अनुभवों या मेरे शरीर की जरूरत से ही क्यों ना पैदा हुई हो। ये है कंपैटिबलिस्ट नजरिया।
बिल्कुल, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हैरी फ्रैंकफर्ट जैसे विचारकों ने कहा कि असली स्वतंत्रता सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि ये भी है कि हम अपनी इच्छाओं के बारे में क्या सोचते हैं।
अच्छा, ये कैसे?
क्या हम वो इच्छा रखना चाहते हैं जो हम रख रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीना चाहता है, लेकिन साथ ही चाहता है कि उसे सिगरेट पीने की इच्छा ना हो।
ये तो होता है।
फ्रैंकफर्ट के मुताबिक जब हमारी दूसरी स्तर की इच्छा, मतलब इच्छा ना रखने की इच्छा, हमारी पहली स्तर की इच्छा, सिगरेट पीने की इच्छा पर हावी होती है, तब हम ज्यादा स्वतंत्र होते हैं।
अच्छा, ये थोड़ा पेचीदा है।
हाँ, पर यह दिखाता है कि कंपैटिबलिस्ट स्वतंत्रता को सिर्फ बाहरी बाधाओं से मुक्ति नहीं, बल्कि एक तरह की अंदरूनी सुसंगतता भी मानते हैं।
ठीक है, ये तो हुई कंपैटिबलिस्ट की बात, लेकिन दूसरा खेमा, इनकंपैटिबलिस्ट, इससे सहमत नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वे कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर सच्ची स्वतंत्रता कैसी?
सही कहा। इनकंपैटिबलिस्ट मानते हैं कि स्वतंत्रता और नियतिवाद कट्टर दुश्मन है, एक साथ नहीं रह सकते। इसमें एक तरफ है लिबर्टेरियन जैसे रॉबर्ट केन।
हाँ, केन।
वे कहते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं और इसका मतलब है कि दुनिया पूरी तरह से नियतिवादी नहीं है।
अच्छा।
केन का सेल्फ फॉर्मिंग एक्शन का विचार यहीं आता है। वो कहते हैं कि जिंदगी के कुछ अहम मुश्किल फैसलों के वक्त हमारे दिमाग में वाकई एक तरह की अनिश्चितता, मतलब इनडिटर्मिनेंसी होती है।
ओके।
और जब हम अपनी इच्छा शक्ति लगाकर उस अनिश्चितता को पार करके कोई चुनाव करते हैं, तो वो पल सिर्फ एक चुनाव नहीं होता,
बल्कि
वो हमारे चरित्र को गढ़ने वाला पल होता है। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि हमारी कोशिश से उपजी स्वतंत्रता है। ये रैंडमनेस की समस्या का एक जवाब देने की कोशिश है कि अनिश्चितता के बावजूद क्रिया हमारी कैसे हो सकती है।
यानी मुश्किल हालात में इच्छा शक्ति का प्रयोग ही असली स्वतंत्रता है। दिलचस्प। लेकिन इनकंपैटिबलिस्ट खेमे में दूसरे लोग भी हैं जो अलग नतीजा निकालते हैं।
हाँ, वो है हार्ड डिटर्मिनिस्ट या स्केप्टिक्स।
अच्छा, जो स्वतंत्रता को भ्रम मानते हैं।
बिल्कुल, वे भी मानते हैं कि स्वतंत्रता और नियतिवाद साथ नहीं चल सकते, लेकिन वे सोचते हैं कि शायद नियतिवाद ही सच है।
ओह।
और इसलिए हमारी गहरी स्वतंत्रता का एहसास एक भ्रम है, खासकर वो स्वतंत्रता जो नैतिक जिम्मेदारी के लिए जरूरी मानी जाती है।
ठीक है।
गेलन स्ट्रॉसन का बेसिक आर्ग्यूमेंट इसी बात पर जोर देता है। वे कहते हैं कि आप अपने कामों के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होने के लिए आपको अपने चरित्र या मानसिक स्थिति के लिए भी जिम्मेदार होना होगा जिसने वो काम करवाए।
सही बात है।
लेकिन क्या आप अपने चरित्र के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आपने खुद को शून्य से बनाया है?
नहीं, ये तो संभव नहीं लगता।
बिल्कुल, स्ट्रॉसन कहते हैं नहीं, इसलिए सच्ची या अंतिम नैतिक जिम्मेदारी शायद संभव ही नहीं है।
बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ लगता है हम आजाद हैं, दूसरी तरफ लगता है सब कुछ तय है।
हाँ।
और तीसरी तरफ ये शक कि शायद आजादी और जिम्मेदारी दोनों ही भ्रम है।
बिल्कुल।
और आजकल तो विज्ञान भी इस बहस में कूद पड़ा है।
बिल्कुल, किताब का एक हिस्सा आधुनिक चुनौतियों पर बात करता है, खासकर न्यूरोसाइंस से।
हाँ, न्यूरोसाइंस।
बेंजामिन लिबेट के मशहूर प्रयोगों का जिक्र आता है।
हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में।
जिनसे पता चला कि किसी काम को करने का हमारा सचेत फैसला लेने से पहले ही दिमाग में उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं।
ओहो, पहले ही?
हाँ। इससे सवाल उठा कि क्या हमारा चेतन मन सिर्फ बाद में आने वाला एक विचार है, जबकि असली फैसला तो अचेतन रूप से पहले ही हो चुका है।
ये तो बड़ा सवाल है।
हालांकि इस पर जबरदस्त बहस है कि क्या ये छोटे मोटे प्रयोग हमारी जिंदगी के बड़े सोच समझकर लिए गए फैसलों पर भी लागू होते हैं या नहीं।
हाँ, ये जरूरी सवाल है, और इस सबसे ये सवाल और गहरा हो जाता है कि अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो फिर नैतिक जिम्मेदारी का क्या होगा?
सही।
क्या हम किसी को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं?
यही सबसे बड़ा सवाल है। पीएफ स्ट्रॉसन जैसे दार्शनिक मानते हैं कि हमारी आपसी भावनाएं, गुस्सा, माफी, कृतज्ञता, ये इतनी गहरी और जरूरी हैं कि नियतिवाद की सच्चाई भी इन्हें खत्म नहीं कर सकती।
मतलब हम ऐसे ही जीते रहेंगे।
हाँ, कि हम इंसानी रिश्तों में एक दूसरे को जिम्मेदार मानते रहेंगे चाहे जो हो। वहीं डर्क पेरबूम जैसे स्केप्टिक्स कहते हैं कि हमें शायद बदला लेने वाले न्याय,
रिट्रीब्यूटिव जस्टिस,
हाँ, उसे छोड़कर समाज को सुरक्षित रखने और लोगों को सुधारने पर आधारित न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए।
अच्छा, मतलब फोकस बदलना चाहिए।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बहस से कुछ मुख्य बातें क्या उभरती हैं, क्या टेकअवेज हैं?
मेरे ख्याल से पहला मुख्य विषय है नियतिवाद की पहेली, विज्ञान का कारण कार्य का नियम और हमारी अपनी आजादी का गहरा एहसास, इन दोनों के बीच का तनाव, ये इस पूरी बहस की जड़ है असल में।
दूसरा, ये साफ है कि स्वतंत्रता के मायने अलग अलग हो सकते हैं।
बिल्कुल।
क्या ये सिर्फ बाहरी मजबूरी से आजादी है, कंपैटिबलिस्ट, या फिर अपने कामों का असली स्रोत होना और वाकई में अलग विकल्प चुन सकने की क्षमता होना है, इनकंपैटिबलिस्ट?
सही। हम किस तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं इसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
तीसरा और शायद सबसे अहम, नैतिक जिम्मेदारी का सवाल।
हाँ, ये तो है ही।
हम लोगों को उनके कामों के लिए कब, क्यों और कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्या इसके लिए जरूरी है कि वे कुछ और कर सकते थे, या ये काफी है कि उनका काम उनके इरादों से निकला?
भारत में भी हम देखते हैं कि कानून और समाज में जिम्मेदारी की धारणा बदल रही है, परिस्थितियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
हाँ, ये दिखता है। चौथा, विज्ञान का बढ़ता दखल।
सही।
न्यूरोसाइंस जैसी चीजें इस सदियों पुरानी बहस को नई दिशा दे रही हैं, नए सवाल खड़े कर रही हैं।
बिल्कुल।
दिमाग के बारे में हमारी समझ जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे स्वतंत्रता के बारे में हमारे विचार भी बदल सकते हैं।
और पांचवा, न्याय व्यवस्था पर असर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर स्वतंत्र इच्छा उतनी नहीं है जितनी हम मानते हैं, तो सजा का मकसद क्या होना चाहिए? बदला लेना या सुधार, और समाज की सुरक्षा?
सही। ये बहस हमें हमारी जेलों, अदालतों और सजा देने के तरीकों पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। भारत में भी जुवेनाइल जस्टिस जैसे क्षेत्रों में ये बहस चल रही है।
हाँ, किताब में बहुत से विचार हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय तर्कों को हम एक तरह से कोर्ट की तरह देख सकते हैं।
हाँ, कुछ मुख्य विचारों को, जैसे कंपैटिबलिस्ट विचार का सार क्या है, वो ये है कि आजादी का मतलब कारण का ना होना नहीं, बल्कि मजबूरी का ना होना है। जब हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से काम करते हैं तो हम आजाद हैं।
ठीक है। और लिबर्टेरियन जैसे केन का मंत्र।
उनका मंत्र है, किसी काम के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होने के लिए हमें उसके पीछे के कारण या मकसद के लिए भी जिम्मेदार होना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे कुछ काम सेल्फ फॉर्मिंग एक्शंस पहले से तय ना हो।
यानी सच्ची जिम्मेदारी के लिए अनिर्धारितता जरूरी है।
और स्केप्टिक जैसे गैलन स्ट्रॉसन की चुनौती क्या है?
उनकी चुनौती है, कोई चीज खुद अपना कारण नहीं बन सकती। सच्ची नैतिक जिम्मेदारी के लिए जरूरी है कि आप अपने मानसिक स्वरूप के लिए खुद जिम्मेदार हों, लेकिन यह असंभव है, इसलिए सच्ची नैतिक जिम्मेदारी एक भ्रम है।
ओह, ये तो सीधी चुनौती है।
बिल्कुल। और हैरी फ्रैंकफर्ट का वो विचार जिसने पारंपरिक सोच को हिला दिया?
हाँ, वो क्या था?
कोई व्यक्ति अपने काम के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है, भले ही वो उस वक्त कुछ और कर ही नहीं सकता था।
क्या? भले ही वो कुछ और नहीं कर सकता था?
हाँ, अहम ये है कि उसने जो किया वो क्यों किया, न कि ये कि क्या वो कुछ और कर सकता था। इसने जिम्मेदारी और विकल्पों के बीच के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर दिया।
ये सब सुनने में बड़ा सैद्धांतिक लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसके क्या मायने हैं? कुछ व्यवहारिक असर?
असर बहुत गहरे हैं। सबसे पहले, कानूनी प्रणाली को देखिए।
हाँ, अगर हम मानते हैं कि लोगों के पास सीमित स्वतंत्रता है, तो शायद हमारा जोर सजा से ज्यादा सुधार और पुनर्वास पर होना चाहिए।
सही।
जैसा कि हम भारत में भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में देखते हैं, जहां मकसद सजा से ज्यादा सुधार और बच्चे को समाज में वापस लाना होता है।
बिल्कुल। और निजी जिंदगी में?
निजी जिंदगी में भी रॉबर्ट केन का SFA का विचार हमें ये याद दिलाता है कि मुश्किल चुनाव सिर्फ मुश्किलें नहीं है,
बल्कि मौके हैं।
हाँ, बल्कि खुद को बेहतर बनाने या बदलने के मौके भी हैं। ये हमें अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं के प्रति ज्यादा सचेत होने के लिए प्रेरित कर सकता है।
और हमारे रिश्तों में इसका क्या असर हो सकता है?
रिश्तों में भी जब कोई दोस्त या रिश्तेदार हमें ठेस पहुंचाता है, तो क्या हम उसे पूरी तरह दोषी मानते हैं या उसकी परिस्थितियों को भी समझते हैं?
ये सोचना चाहिए।
स्वतंत्र इच्छा पर संदेह हमें शायद ज्यादा हमदर्द और माफ करने वाला बना सकता है।
सही बात है।
वहीं किसी की मदद के लिए शुक्रिया अदा करना भी इसी विश्वास पर टिका है कि उसने अच्छा करने का चुनाव किया।
हाँ, ये भी है। और अपनी कामयाबियों के बारे में क्या?
बिल्कुल। क्या हमारी सफलता पूरी तरह हमारी मेहनत का नतीजा है, या इसमें किस्मत, माहौल और दूसरों की मदद का भी बड़ा हाथ है?
शायद दोनों का।
हाँ, ये सोच हमें थोड़ा विनम्र बना सकती है। अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हुए भी ये याद रखने में मदद करती है कि हम अकेले नहीं हैं।
तो इस पूरी गहरी और कभी कभी उलझाने वाली चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? अंतिम निष्कर्ष क्या है?
पहली बात तो ये कि स्वतंत्र इच्छा का सवाल बहुत पेचीदा है, जिसका कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं है।
सही।
किताब हर पहलू के मजबूत तर्क सामने रखती है और कमजोरियां भी।
दूसरी बात, ये सिर्फ दार्शनिकों का सिरदर्द नहीं है, ये हमारी नैतिकता, कानून, रिश्ते,
हाँ,
और खुद के बारे में हमारी समझ से जुड़ा एक बुनियादी मुद्दा है। हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमारी सोच इस पर निर्भर करती है।
बिल्कुल। और अंत में शायद ये किताब हमें स्वतंत्रता की एक ज्यादा बारीक, एक परिष्कृत समझ देती है। हम एक तयशुदा जवाब के साथ नहीं, बल्कि इस मुद्दे की जटिलता की गहरी समझ और मानवीय क्षमता की ज्यादा कद्र के साथ बाहर आते हैं।
और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर ये मान भी लें कि हमारी आज़ादी उतनी नहीं जितनी हम सोचते हैं, कि हमारे फैसले बहुत सी बाहरी और अंदरूनी चीज़ों से प्रभावित होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता,
हाँ,
तो क्या इससे हमारी कोशिशों, हमारे इरादों, हमारे संघर्षों का मोल कम हो जाता है?
बड़ा सवाल है।
या फिर क्या ये समझ हमें अपने और दूसरों के प्रति ज्यादा करुणा और विनम्रता सिखा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्यत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।